आज है 6 दिसंबर दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। बाबरी मस्जिद ध्वंस के 25 बरस पूरे हुए। अयोध्या में शौर्य दिवस मनाया गया और गम का इजहार भी हुआ।
अयोध्या के जो मुसलमान हैं, जो साधु संत हैं, उनको 1 घंटे बंद कमरे में बैठा दिया जाए और आपस में बैठकर बात हो जाए। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 घंटे के अंदर मसला हल हो जाएगा।
तेल अवीव के बजाय यरूशलम को इसराइल की राजधानी घोषित करेगा अमरीका। यरूशलम भी चलेंगे।
बहुत चिंताजनक स्थिति बन सकती है। यहाँ पर फिर से हिंसा का एक दौर जो है वो शुरू हो सकता है।
दुनिया जहान में सुनिएगा कि नेपाल के विश्लेषक किस खतरे की ओर इशारा करते हैं।
वो राजनीतिक अनाथ बन के रह गया है मधेश, तो ऐसी स्थितियों में सशस्त्र विप्लव की संभावनाएं तो बढ़ जाती है।
पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को आज 25 साल पूरे हो गए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं, जबकि मुस्लिम संगठनों ने इस दिन को यौमे गम यानी काले दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस बीच फैजाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पुलिस के साथ साथ संवेदनशील इलाकों में CRPF को भी तैनात किया गया है। इसराइल के शिक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि अमेरिका के यरूशलम को इसराइल की राजधानी मानने का फैसला शांति बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने अन्य देशों से भी अपील की कि वो अमेरिका की तरह शांति का रास्ता अपनाएं। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यरूशलम को इसराइल की राजधानी का दर्जा दे सकते हैं और वे तेल अवीव में मौजूद अमरीकी दूतावास को वहां से हटाकर यरूशलम लाने के संबंध में आदेश दे सकते हैं। होंडुरास में विपक्ष ने हाल में हुए राष्ट्रपति चुनावों में मतों की दोबारा गिनती की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में राष्ट्रपति खुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज के पक्ष में धोखाधड़ी की गई है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से देश में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और इन प्रदर्शनों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। होंडुरास से निवासियों का कहना है कि वो अब निष्पक्ष चुनाव की मांग का समर्थन कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं, इस समस्या को जितना जल्दी हो सके सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये युद्ध की स्थिति है। हमारी कोई आज़ादी नहीं और लंबे वक्त से ऐसा चला आ रहा है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ कैदी की तरह हैं, लेकिन ये अच्छा होगा कि वो लोग इसे सुधारें और पहले की तरह सभी मामले सुलझा लें। होंडुरास के एक निवासी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने अगले साल दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने से रूस को प्रतिबंधित कर दिया है। 17 महीने लंबे चले जांच में IOC ने पाया कि रूस ने डोपिंग विरोधी कानूनों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की है। IOC के अनुसार 2014 के विंटर ओलंपिक के दौरान सरकार प्रायोजित डोपिंग के सबूत मिले हैं। इन खेलों की मेजबानी रूस ने की थी। मॉस्को में आयोजित एक प्रेस वार्ता में रूसी संसद के सदस्य व्लादिमीर गाजायेव ने कहा कि IOC के फैसले को राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा,
наши в кавычках оппоненты, значит, которые сегодня являются и политическими оппонентами, значит, не могут пережить.
जो हमारे विरोधी कहलाया करते थे वो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी हैं, और सोची में रूसी खिलाड़ियों की सफलता को वो बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि बेशक सभी प्रतियोगिताओं में रूसी खिलाड़ी ही सर्वश्रेष्ठ थे, और निश्चित तौर पर यही प्रतिद्वंद्विता है और राजनीति से प्रेरित भी है। दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इन्हीं मूल्यों से प्रेरित है। रूसी संसद के सदस्य व्लादिमीर गाजायेव के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। उत्तर कोरिया की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी चीन के से निकलने वाले एक सरकारी अखबार ने परमाणु हमले की सूरत में कैसे बचा जाया जा सकता है, इस बारे में जानकारी छापी है। जिलिन डेली में छपे कई लेखों की सीरीज में परमाणु हथियार किस तरह काम करते हैं और इनसे होने वाले विकिरण से किस तरह बचा जा सकता है, इस बारे में जानकारी दी गई है। अखबार का कहना है कि इन लेखों का उत्तर कोरिया के साथ जारी तनाव से कोई संबंध नहीं है। जाम्बिया में रेलवे कर्मचारियों ने काम बंद करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद जाम्बिया और तंजानिया के बीच चलने वाली रेल सेवा को बंद कर दिया गया है। जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से होने वाले तांबे के आयात के लिए इस रेल लाइन को बेहद अहम माना जाता है। कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें 2 महीनों के काम का पैसा नहीं मिला है। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। पच्चीस साल पहले आज ही के दिन हिंदुत्ववादी संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को दिए वचन के बावजूद लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल जैसे नेताओं की आंखों के सामने अयोध्या में 16वीं शताब्दी में बनाई गई बाबरी मस्जिद को तोड़ डाला। ये वो क्षण था जिसके बाद से भारतीय राजनीति का मिजाज और रंगत पूरी तरह बदल गई। इससे पहले महीनों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषांगिक संगठनों ने गांव-गांव में कार सेवकों को गोलबंद करने के लिए अभियान चलाया। उनका प्रमुख नारा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज इस घटना की बरसी पर अयोध्या में कहीं शौर्य दिवस मनाया गया तो कहीं काला दिवस। पत्रकार समीर आत्मज मिश्र ने वहीं से भेजी है ये रिपोर्ट।
पिछले 25 साल से अयोध्या के कैलेंडर में 6 दिसंबर एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज है जिसे वहां के लोग भले ही याद न करना चाहें लेकिन उन्हें याद दिलाने की कोशिश खूब की जाती है। शहर के भीतर घुसते ही पुलिस वालों की चौकसी, बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था और मंगलवार रात से लगी धारा 144 प्रशासनिक सतर्कता या किसी हाई अलर्ट की सूचना भले ही दे रही हो लेकिन शहर के भीतर वहाँ के लोगों की दिनचर्या वैसी ही थी और बाहर से आए श्रद्धालुओं की भी। ये अलग बात है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद विवादित परिसर में तब्दील जिस इलाके को लेकर विवाद हो रहा है उसके 1 किलोमीटर के भीतर एक ओर शौर्य दिवस मनाया जा रहा था तो दूसरी ओर योम गम यानी शोक दिवस। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में पक्षकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी के घर पर करीब 11 बजे से ही लोग इसलिए जमा होने लगे थे जिससे कि वो ये संदेश दे सकें कि उन्हें मस्जिद गिराए जाने का दुख है और वो चाहते हैं कि उनकी मस्जिद दोबारा बने।
हमने इस मुल्क के लिए, मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए अपनी जाने कुर्बान करके हमने देश आज़ाद कराया है तो हम आए हाशिम अंसारी साहब भी और हम लोग की हमेशा एक बात की कोशिश रही है कि मामला अगर बातचीत से हल हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हम सर्वमान होगा, हम लोग उसको मानेंगे
और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी जो उम्मीदें हैं वो हमारी मांग भी जायज़ है और हमारे हकूक जो हैं आइन में दिए गए हैं तो हमारे हकूक की बहाली की जाए और मस्जिद को उसी जगह पे तामीर कराया जाए।
अयोध्या के जो मुसलमान हैं, जो साधु संत हैं, उनको 1 घंटे बंद कमरे में बैठा दिया जाए और आपस में बैठकर बात हो जाए। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 घंटे के अंदर मसला हल हो जाएगा।
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मौजूदा कन्वीनर हाजी आफाक अहमद खान का कहना था कि उन्हें सुलह की तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, हाँ अदालत से कुछ उम्मीद जरूर बाकी है।
कम्प्रोमाइज जब होता है दो पार्टियों में तो गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है। यहाँ जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक है कि हमारी आस्था का प्रश्न है, आप छोड़ दीजिए। ये तो सिर्फ एक जिद की बात है कि साहब मुसलमान छोड़ दें बस। दूसरी चीज, इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन एक भी व्यक्ति दंडित नहीं हुआ।
यहाँ से कुछ ही दूर पर एक बड़े से परिसर में बने कार सेवकपुरम में जब हम पहुंचे तो वहाँ भजन, नारेबाजी और भाषणों के जरिए राम मंदिर बनाए जाने का संकल्प दोहराया जा रहा था। शौर्य दिवस नाम से ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित किया गया था। परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा बोले कि अब ये मामला और इसका फैसला न्यायालय की सीमा से बाहर जा चुका है।
न्याय की धुरी पर हिंदू समाज ही चक्कर काट रहा है। रामलला जो है वह स्वयं वहाँ के स्वामी हैं, वही अदालत के अंदर जो है प्रस्तुत हैं, वही खड़े हैं कि हमको न्याय मिले। तो मुझे लगता है कि इस न्याय में देरी हो रही है। और रही बात सुलह समझौते की, तो सुलह समझौते का दौर समाप्त हो चुका है, अब सुन्नी वक्फ बोर्ड को अपने मुकदमे को वापस ले लेना चाहिए।
ये अलग बात है कि अयोध्या की सड़कों पर जब आम लोगों से बात होती है तो वो इस विवाद को लेकर बात करने में खास दिलचस्पी नहीं दिखाते। बहरहाल इस विवाद को सुलझाने के लिए अदालत से लेकर आपसी संवाद तक के तमाम रास्ते खोजे जा रहे हैं। कुछ को इसके सुलझने की उम्मीद है तो कुछ ना उम्मीद हो गए हैं। उन्हीं में से एक 60 वर्षीय संतोष कुमारी चौरसिया भी हैं जो राम मंदिर निर्माण कार्यशाला के ठीक सामने एक छोटी सी गुमटी नुमा चाय और पान की दुकान चलाती हैं।
भैया हम लोग का तो इरादा नहीं है कि बन पाएगा, कभी नहीं। यहाँ का नेता और बाबा लोग भी नहीं चाहते, क्यों कि हर मंदिर की जो मुद्रा आती है सब बंद हो जाएंगे।
समीर आत्मज मिश्र, BBC अयोध्या।
बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 25 वर्ष पूरे हुए। ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर
शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
देश के बाद अब एक नजर दुनिया पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज तेल अवीव की बजाय यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने की घोषणा कर सकते हैं। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि इसके साथ ही अमरीका अपना दूतावास भी यरूशलम ले जाने की घोषणा कर सकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप प्रशासन की आलोचना की जा रही है। ब्रिटेन सहित कई देशों के राजनेताओं ने अमरीका से ऐसी घोषणा न करने की अपील की है, लेकिन इसराइल के लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से।
ट्रंप के यरूशलेम को इसराइल की राजधानी बनाने के संभावित कदम पर गाजा शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं और अमेरिका के झंडे जला रहे हैं। अगर अमेरिका यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में स्वीकार करता है तो वो 1948 में इसराइल की स्थापना के बाद ऐसा करने वाला पहला देश होगा। इसराइल के शिक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने इस फैसले का स्वागत किया है।
Strategic patience has paid off.
आज जो हम देखने जा रहे हैं वो बताता है कि ये इसराइल के संयम का नतीजा है। हमें बार बार कहा जाता रहा है कि अगर हम अपनी स्वीकार्यता चाहते हैं तो इसराइल के हिस्से को काट कर अपने दुश्मनों को दे दें।
दुनिया के कई देशों ने इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि अगर ये फैसला किया गया तो मध्य पूर्व में हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है। एक सार्वभौम फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन के मुद्दे पर इसराइल और फिलिस्तीनी लोगों के बीच दशकों से विवाद चला आ रहा है। इसके केंद्र में यरूशलम शहर भी है जिसे ईसाई, यहूदी और मुसलमान पवित्र मानते हैं। इसराइल कहता है कि समूचा यरूशलम उसका है, जबकि शहर का पूर्वी हिस्सा फिलिस्तीनी क्षेत्र में पड़ता है। फिलिस्तीनी प्रशासन के सांसद डॉक्टर मुस्तफा बरघोटी ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह फैसला गंभीर नुकसान करेगा।
It means that the United States is officially participating in violating international law.
इस फैसले का मतलब है कि अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने पर उतर आया है और इसराइल के लिए पक्षपाती होकर भविष्य में शांति प्रक्रिया में भूमिका अदा करने का मौका भी खत्म कर रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि ट्रंप ने एक खतरनाक कदम उठाया है जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा, रंगभेद के सिस्टम को और बढ़ाएगा जिसे फलस्तीनी पहले से ही झेल रहे हैं।
तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने भी राष्ट्रपति ट्रंप को अपने फैसले पर फिर से विचार करने की सलाह दी है।
अमेरिका büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu ifade ediyor.
ऐसा कहा जा रहा है कि अमरीकी दूतावास को यरूशलम ले जाया जा सकता है या यरूशलम को इसराइल की राजधानी का दर्जा दिया जा सकता है। दोनों ही फैसले गैर कानूनी हैं जिससे क्षेत्र में समस्याएं और बढ़ेंगी। इसलिए क्षेत्र के भविष्य के लिए और विश्व शांति के लिए जरूरी है कि अमरीका के राष्ट्रपति इस मामले में कोई बयान जारी न करें।
ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने भी अमेरिका के संभावित कदम पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि शहर की स्थिति को ऐसा ही बना रहने दें।
Il mio pensiero va ora a Gerusalemme.
यरूशलम एक अनोखा शहर है जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए पवित्र है, जहां उनके पूजनीय स्थल हैं और शांति ही इसका कर्म है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की स्थिति सामने आई है, मैं उस चिंता में चुप नहीं रह सकता, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि शहर की स्थिति को बरकरार रखें।
साल 1967 में मध्य पूर्व युद्ध के दौरान इसराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले इस पर जॉर्डन का कब्जा था। हालांकि यरूशलम पर इसराइली अधिकार को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल पाई और सभी देश, यहां तक इसराइल के सबसे करीबी देश अमरीका ने भी अपना दूतावास तेल अवीव में ही बनाए रखा।
ये रिपोर्ट आपने सुनी सर्वप्रिया सांगवान से। मध्य पूर्व में शांति एक बेतरह कसे हुए पतले तार जैसी है जो थोड़ा सा और कसे जाने पर टक से टूट सकता है। इसराइली और फलस्तीनी वाले मसले पर नजर रखने वाले अब सांसें रोके अमेरिका की घोषणा के असर का इंतजार कर रहे हैं। फलस्तीनी संगठन हमास ने कह ही दिया है कि अगर यरूशलम को इसराइली राजधानी के तौर पर मान्यता दी गई तो ये आग के गोली की तरह असर करेगी। मैंने कुछ ही देर पहले यरूशलम में वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा से संपर्क किया और पूछा कि शहर में सब ठीक तो है।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ काफी चिंता है। चारों तरफ जो खास करके जो सेंसिटिव इलाके यहाँ पर माने जाते हैं, वहाँ पर पुलिस की काफी मौजूदगी नजर आई। आज जब मैं ओल्ड सिटी से गुजर रहा था, जो कि पूर्वी यरूशलम का हिस्सा है, तो वहाँ पुराने शहर के पास जहाँ की खास करके जो सारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ बहुत ही जबरदस्त देखा मौजूदगी पुलिस और फौज के लोगों की। वहाँ पर पूरे इलाके की नाकाबंदी हो रखी है और खास करके जबकि फलिस्तीनियों ने 3 दिनों के डे ऑफ रेज गुस्से का रोज जो डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने घोषणा की है कि अगले 3 दिन जो है वो वहां पर काफी जो है डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, प्रदर्शन होंगे फिलिस्तीनी इलाकों में, उसको लेकर के यहां पर काफी चिंता नजर आ रही है।
जेरूसलम के बारे में जरा हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को बताइए, उस शहर में आप मौजूद हैं, क्या व्यवस्था क्या है, इसराइल के कब्जे में कौन सा हिस्सा है, फिलिस्तीनियों के कब्जे में कौन सा हिस्सा है, ये शहर है कैसा?
देखिए जेरूसलम जो है, चाहे वो पुराना जेरूसलम का हिस्सा हो या फिर नया, जो नए हिस्से को पश्चिमी जेरूसलम कहते हैं, जिसे कि ये एक तरह से रिकग्नाइज किया जा चुका है कि वो पश्चिमी इलाका जो है वो इसराइल के कंट्रोल में है और उसको लेकर के कोई विवाद नहीं है। पूर्वी यरूशलम का जो हिस्सा है वो दरअसल इसराइल के नियंत्रण में है, वहां पर इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरा इसराइल के कंट्रोल में है और वहां की लेकिन आबादी जो है वो फलस्तीनी बहुल है। तकरीबन वहां के 90% जो लोग हैं वो फिलिस्तीनी हैं, उसमें भी मुस्लिम बहुमत जो है वहां पर साफ देखने को मिलता है। तो ये जो इलाका है पूर्वी यरूशलम का, ये 1967 के जंग में इसराइल ने उस पर कब्जा किया, उसके पहले वो जॉर्डन के कंट्रोल में था और यही जो इलाका है वो विवादास्पद इलाका है, जिसे कि फिलिस्तीनी अपना बोलते हैं कि अगर जो फिलिस्तीनी राष्ट्र बनेगा वो उसकी राजधानी होगी पूर्वी यरूशलम। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर बहुत चिंताजनक स्थिति बन सकती है, यहाँ पर फिर से हिंसा का एक दौर जो है वो शुरू हो सकता है।
हरेंद्र मिश्रा, ये भी बताएं कि अमेरिका का ये घोषणा करना कि वो तेल अवीव नहीं बल्कि जेरूसलम को राजधानी मानेंगे, असल में इसराइल क्या मानता है, इसराइल की राजधानी कहाँ है?
देखिए इसराइल हमेशा ये कहता रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों यरूशलेम जो है वो इसराइल की राजधानी है। इसराइल का जो सरकारी जो बयान है वो कुछ इस तरह का है, लेकिन अभी की जो सरकार है उसने साफ किया है कि जो पूरा जो यरूशलेम है वो इसराइल की राजधानी है और पूरा यरूशलेम जो है वो 3000 वर्षों से यहाँ पर जो अभी वक्तव्य आ रहे हैं उसके अनुसार इसराइल की राजधानी है और उनकी मांग रही है कि इसी तरह की कोई घोषणा हो। लेकिन ये घोषणा एक तरफ की बात है, यहाँ पर अभी जो मीडिया में जो कुछ यहाँ पर विश्लेषकों ने लिखा है उसमें ये लिखा है कि हालांकि इस तरह की मांग दक्षिणपंथी सरकार करती रही है, लेकिन सरकार को ये पता था कि अगर इस तरह की बात वाकई हो जाए और अमरीका इस तरह की कोई घोषणा कर दे तो यहाँ पर स्थिति चिंताजनक हो सकती है।
ये थे यरूशलम से पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। आज बुधवार है और समय है दुनिया जहान का। नेपाल में संघीय संसद और 7 प्रांतीय सभाओं के लिए एक साथ चुनाव हो रहे हैं। एक चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान कल यानी 7 दिसंबर को होगा। देश में नया संविधान बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इस जनतांत्रिक संविधान पर तराई मधेश के लोगों में असंतोष है। लोगों को उम्मीद है कि उनके देश में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म होगा। लीजिए आदर्श राठौड़ प्रस्तुत कर रहे हैं दुनिया जहान।
दुनिया जहां गृह युद्ध खत्म होने और राजशाही के अंत के बाद नेपाल में पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं। पिछले 27 साल से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर बना रहा। इस दौरान कई सरकारें बनी और गिरी, कई प्रधानमंत्री बने मगर किसी को भी कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं मिला। पिछले 11 सालों में नेपाल 10 प्रधानमंत्री देख चुका है। इस राजनीतिक अस्थिरता का नेपाल को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। देश के विकास की रफ्तार मंद हो गई है मगर अब नया संविधान बनने के बाद पहली बार हो रहे चुनावों से लोगों को उम्मीद है कि अब की बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी जो स्थिरता लाएगी। वाम गठबंधन हो या लोकतांत्रिक गठबंधन, दोनों स्थिर सरकार देने का वादा कर रहे हैं। वाम गठबंधन के मुख्य दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेता ईश्वर पोखरेल कहते हैं,
पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के चलते हमारे देश के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए, सुशासन के लिए और लोक कल्याणकारी जितने भी काम हम लोग को करना है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप अक्सर सरकार बनाने और गिराने, सरकार में रहने, इसी के चक्कर में है।
ये पहला मौका है जब सभी वामपंथी दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला है लोकतांत्रिक गठबंधन से, जिसकी मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस मानती है कि चुनाव प्रणाली में खोट भी कहीं न कहीं अस्थिरता के लिए जिम्मेदार है। नेपाली कांग्रेस के सूचना अधिकारी केशव रिजाल कहते हैं,
ये तो नेपाल के मतलब ये इलेक्शन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। अब ये इलेक्शन सिस्टम जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का दो इलेक्शन सिस्टम जो है, इसके कारण विगत में मतलब एक ही राजनीतिक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं आया है।
राजनीतिक पार्टियां तो कई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं, मगर सरकार जिसकी भी बनेगी उसके सामने बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और नौकरियों की व्यवस्था करने की चुनौती होगी। साथ ही उसे देश के नए संविधान को लेकर पैदा हुए संकट को भी दूर करना होगा। नेपाल के तराई मधेस इलाके में नए संविधान को लेकर असंतोष बना हुआ है। वरिष्ठ नेपाली पत्रकार सीके लाल कहते हैं, तराई मधेस के लोग और राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग तो ले रहे हैं, मगर उनकी अपनी चिंताएं हैं।
सितंबर 2015 में संविधान लागू हुआ, संविधान का मधेस में बहुत विरोध हुआ, 6 महीने तक आंदोलन चले, कुछ दिनों तक नाकाकसी भी हुई, मगर कहा गया कि संविधान में संशोधन किया जाएगा, कुछ संबोधन तो हुए मगर बाकी के संबोधन नहीं हुए। तो अभी जो है नेपाल का मानस बटा हुआ है, एक और मधेस है जो कहता है कि इस संविधान में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, हमारे जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं है, जो प्रांत बने हैं उसमें भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, नागरिकता के जो प्रावधान है वो उचित नहीं है, तो असंतोष है मधेस में। और दूसरी ओर जो खस आ रहे एक नई कैटेगरी प्रवर्ग बनाया गया है नए संविधान में, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग हैं, ये कहते हैं कि नहीं, इसी संविधान को लागू करना है, संशोधन की बात अभी बेमानी है। तो मानस बिल्कुल दो तबकों में बटा हुआ है।
संविधान को अन्यायपूर्ण बताते हुए मधेस में 3 बार आंदोलन हुआ, प्रांतों के सीमांकन को लेकर भी उनमें असंतोष है, मगर इन मांगों को लेकर राजनीतिक दल बंटे हुए हैं। वाम गठबंधन यूएमएल के नेता ईश्वर पोखरल कहते हैं,
मधेस के जनता का जितना भी बात है उनके साथ में बैठ के बातचीत किया जा सकता है, उन्होंने संविधान बनाने में उनका जो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जितने भी उनके उनके तरफ से बात आई है उस बात को बैठ के हम लोग फिर बातचीत कर सकते हैं, एड्रेस करने वाली बात को एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन इन सारी बातों को विथ ड्यू प्रोसेस अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन विथ ड्यू प्रोसेस वी हैव टू रिजॉल्व ऑल दीज थिंग्स।
वहीं नेपाली कांग्रेस खुद को मधेस की जनता का पैरोकार बताती है। पार्टी के सूचना अधिकारी केशव रिजाल कहते हैं,
मधेस का जो मुद्दा है, मधेस का जो जनता है उसके पक्ष में नेपाली कांग्रेस अपनी स्थापना काल से ही निरंतर लगी है, तो मधेस का मुद्दा जो मधेस के कुछ मुद्दे में असंतुष्टि रहा है संविधान के जो प्रोविजन है उसमें, उनको संशोधन करके मधेसी जनता के पक्ष में संशोधन करके नेपाली कांग्रेस मधेसी जनता के जो असंतुष्टियां है उसको दूर करने में नेपाली कांग्रेस लगी है, और इलेक्शन के बाद नेपाली कांग्रेस का मेजोरिटी आने के बाद संविधान को संशोधन करके मधेस का सब मुद्दाओं को, मधेस का सब समस्याओं को नेपाली कांग्रेस समाधान करेगा।
कुछ कहते हैं कि इसी संविधान को लागू करना है, तो कुछ का कहना है कि इसमें संशोधन किया जाएगा। ऐसे में मधेसियों की मांग कैसे पूरी हो सकती है? नेपाली पत्रकार सीके लाल कहते हैं कि अगर मधेसी मतदाता मिलकर मधेसी पार्टियों को जिता भी दें तब भी वो संविधान में बदलाव नहीं ला पाएंगी।
मधेसी मतदाताओं की समस्या ही ये हो गई है कि एक और कुआं दूसरी ओर खाई, अगर वो पूरा का पूरा जो अभी 2 नंबर प्रांत कहा जा रहा है पूरा का पूरा भी वो मधेसी पार्टी को मत देते हैं तो कुल संसद में उनकी संख्या सिर्फ 32 होगी, जो प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 है उसमें, तो उनकी जो संख्या होगी वो संविधान संशोधन के लिए पर्याप्त नहीं होगी, तो उनके लिए लाजमी है कि किसी के साथ गठबंधन किया जाए, बाध्यता है उन।
चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन सा गठबंधन सत्ता में आ रहा है, और मधेसियों की चिंताओं का समाधान काफी हद तक इसी पर निर्भर करेगा और देश की शांति का भी। अगर नई सरकार तराई मधेस के लोगों में संविधान को लेकर पैदा हुए असंतोष को सुलझा नहीं पाई तो क्या होगा? नेपाली पत्रकार सी के लाल कहते हैं,
नेपाल में हरेक चुनाव के बाद एक विभाजन सी आ जाती है और यहाँ तो पहले से विद्यमान है, तो हो सकता है कि जो खाई चौड़ी थी वो थोड़ी गहरी भी हो जाए, तो ये जो चुनाव है किसी समस्या को समाधान करने की वजह से की जगह हो सकता है नए समस्याओं की सृजना करे, ये जो डर है वो काफी गहरा है। तो एक किस्म से यहाँ देखा जा रहा है कि वामपंथी गठबंधन के पीछे चीन का हाथ हो सकता है और जो लोकतांत्रिक गठबंधन कह रहे हैं उसमें दिल्ली के का आशीर्वाद हो सकता है, मगर दोनों में से कोई भी मधेश के मामले में उदार अगर नजर नहीं आते हैं तो भू राजनीतिक अनाथ बन के रह गया है मधेश। तो ऐसी स्थितियों में सशस्त्र विप्लव की संभावनाएं तो बढ़ जाती है।
देश बिगारमा बनाउन महत्व हुन्छ भोटको, व्यक्ति हेरी भोट हालौं चलखेल नहोस् नोटको।
नेपाल की गिनती पिछड़े देशों में होती है और इसके बहुत से इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा है। पहले राजनीतिक अस्थिरता और फिर 2015 में आए भीषण भूकंप ने कई इलाकों को और पीछे धकेल दिया है। लोग चाहते हैं कि अब जो सरकार बने वो स्थिर हो ताकि नेपाल विकास की राह पर आगे बढ़ सके, लेकिन नई सरकार के सामने सभी को साथ लेकर चलते हुए देश के नए संविधान को अमल में लाने की भी चुनौती होगी।
दुनिया जहान का ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। और अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच दिल्ली में खेला गया सीरीज का आखिरी मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हो गया आज। इसी के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की ये टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली और ऑस्ट्रेलिया के लगातार 9 टेस्ट सीरीज जीतने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। 410 के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम ने 299 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन टीम इंडिया मैच जीतने के लिए बचे हुए 5 विकेट हासिल करने में नाकाम रही और मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। दूसरी पारी में श्रीलंका की तरफ से धनंजय डिसिल्वा ने 119 रन बनाए जबकि रोशन सिल्वा ने 74 रनों की पारी खेलकर मैच ड्रॉ करा दिया, जो कि श्रीलंका के लिए किसी जीत से कम नहीं या यूं कहा जाए कि जीत के समान ही है। क्या कहते हैं फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर अतुल वासन?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि इंडियन टीम पूरी समय टॉप पे रही पर अच्छा एक पलटवार किया, जब पहली इनिंग में बैटिंग की और दूसरी पारी में उन्होंने अच्छी एक फाइट बैक दिखाई क्योंकि विकेट भी बहुत धीमा हो गया था, ये विकेट के ऊपर फिर भी हमारे गेंदबाजों ने काफी मेहनत मशक्कत की, कम बैक तो नहीं पर पूरी तरह से सीरीज डोमिनेट की भारत ने। अगर पहला मैच में अगर पूरा सा मैच हो जाता तो शायद वो भी हम मैच जीत जाते।
श्रीलंका की तरफ से दिनेश चांदीमल ने सबसे ज्यादा 164 रन बनाए। चांदीमल ने अपनी पारी में 361 गेंदों पर 21 चौके और 1 छक्का लगाया। एंजेलो मैथ्यूज ने 111 रनों की शतकीय पारी खेली। मैथ्यूज और चांदीमल ने चौथे विकेट के लिए 181 रनों की साझेदारी करते हुए ये कहा जाए कि श्रीलंका को संकट से बाहर निकाला था तो कुछ कम नहीं होगा। और भारतीय कैप्टन विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। हालांकि 10 दिसंबर से जो ओडीआई होने वाले हैं श्रीलंका और भारत के बीच में उसमें विराट कोहली नहीं खेलेंगे, लेकिन एक लंबे विराम के बाद विराट कोहली से फिर से रिकॉर्ड्स की उम्मीद क्रिकेट फैंस जरूर करेंगे। खेल समाचारों में इतना ही।
और खेल समाचारों के बाद एक नजर सुर्खियों पर।
बीबीसी समाचार। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार इस साल उन महिलाओं को दिया गया है जिन्होंने यौन हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। पत्रिका ने इन महिलाओं को साइलेंस ब्रेकर यानी चुप्पी तोड़ने वाली कहा है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। इसराइल के शिक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि अमरीका के यरूशलम को इसराइल की राजधानी मानने का फैसला शांति बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। होंडुरास में विपक्ष ने हाल में हुए राष्ट्रपति चुनावों में मतों की दोबारा गिनती की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अगले साल दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने से रूस को प्रतिबंधित कर दिया है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर में दोस्तों आज इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने और इसे फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की गुरप्रीत कौर ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी अनुमति चाहता हूं। अगली मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि।